ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 287। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, पहले एक कल्प में तुम और हम हुए थे। तुम मेरे शिष्य थे और मैं तुम्हारा गुरु था। तुमने एक वन में मुझसे प्रश्न किया था कि हे भगवान, एक मुझको संशय है, उसे मिटाओ। महाप्रलय में नष्ट क्या होता है और अविनाशी क्या रहता है? तब मैंने कहा था, हे तात, जितना शेष विशेष रूप जगत है वह सब नष्ट हो जाता है। जैसे स्वप्न का नगर सुषुप्ति में लीन होता है और निर्विशेष ब्रह्म सत्ता शेष रहती है। क्रिया, काल, कर्म, आकाश, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, पहाड़, नदी आदि जो कुछ जगत क्रिया, काल और द्रव्य से युक्त है वह सब नष्ट हो जाता है। और ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, ये जो कार्य के कारण है, इनका नाम भी नहीं रहता। चैतन्य का लक्षण रूप संवेदन शक्ति भी नहीं रहती। केवल अचेत चिन्मात्र एक चिदाकाश ही शेष रहता है। शिष्य बोला, हे मुनीश्वर, जो वस्तु सत्य होती है उसका नाश नहीं होता और जो असत्य होती है वह आभास रूप है। पर यह जगत तो विद्यमान दिखता है, महाप्रलय में कहाँ जाएगा? तब गुरु बोले, हे तात, जो सत्य है उसका नाश कभी नहीं होता और जो असत्य है उसका भाव नहीं है। इसलिए जितना कुछ जगत तुमको दिखता है सो सब भ्रम मात्र है। इसमें कोई वस्तु भी सत्य नहीं दिखती। परंतु जैसे मृग तृष्णा का जल नहीं होता और दूसरा चंद्रमा व आकाश में तरुवर भ्रम मात्र है, वैसे ही यह जगत जो दिखता है वह भ्रम मात्र है। जैसे स्वप्न का नगर प्रत्यक्ष भी दिखता है परंतु भ्रम मात्र है, वैसे ही यह जगत भी भ्रम रूप ही जानो। हे तात, आत्मसत्ता सर्वदा सर्वत्र अपने आप में स्थित है। जैसे स्वप्न में जागृत का और जागृत में स्वप्न का अभाव होता है तो सृष्टि कहा जाती है। जैसे जागृत में स्वप्न की सृष्टि का अभाव हो जाता है, वैसे ही महाप्रलय में इसका अभाव हो जाता है। शिष्य बोला, हे भगवान, यह जो दिखता है सो क्या है और जो नहीं दिखता सो क्या है? इसका रूप क्या है और यह चिदाकाश से कैसे हुआ है? गुरु बोले, हे शिष्य, जब शुद्ध चिदाकाश में किंचन संवेदन फुरता है तब जगत रूप होकर दिखता है। ऐसे इसका रूप भी चिदाकाश ही है, चिदाकाश से भिन्न कुछ नहीं। सृष्टि और प्रलय दोनों उसी के रूप हैं। जब संवेदन फुरता है तब सृष्टि दिखती है और जब नहीं फुरती तब प्रलय रूप भासित होती है, पर दोनों ही उसके रूप है। जैसे एक ही वपु में दो स्वरूप है, दंतों से शुक्ल लगता है और केशों से कृष्ण लगता है, वैसे ही आत्मा में सर्ग और प्रलय दो रूप है पर दोनों आत्म रूप है। जैसे एक ही निद्रा की दो अवस्थाएं होती है, एक स्वप्न और दूसरी सुषुप्ति, परंतु जागृत में दोनों नहीं होती, वैसे ही निद्रा रूप संवेदन में सर्ग और प्रलय भासित होता है पर जागृत रूप आत्मा में दोनों का अभाव है। हे तात, जो कुछ तुमको दिखता है वह सब चिदाकाश रूप है और कुछ नहीं, ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। जैसे स्वप्न में अपना अनुभव ही जगत रूप दिखता है, वैसे ही आत्मा में जगत दिखता है। शिष्य बोला, हे भगवन, जो इसी प्रकार है कि दृष्टा ही दृश्य रूप होकर भासता है, तो और जगत तो कुछ न हुआ, वही रूप है। गुरु बोले, हितात, यही बात है। जगत कुछ वस्तु नहीं, चिदाकाश ही जगत रूप होकर दिखता है। आत्मसत्ता ही इस प्रकार भासित होती है और कुछ नहीं, क्योंकि सब उसी का किंचन है। सब में सर्वदा सब प्रकार वही सृष्टि होकर फुरती है। किसी में किसी समय किसी प्रकार कुछ हुआ नहीं, आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है। जो कुछ जगत दिखता है उसे वही रूप जानो। जिसको तो सर्ग और प्रलय कहता है, वह सब आत्मसत्ता के नाम है। वही सब में सर्वदा सब प्रकार स्थित है। एक ही परम देव घट पट रूप हुआ है। पर्वत, पट, जल, तृण, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, स्थावर जंगम, अस्ति नास्ति, शून्य अशून्य, क्रिया काल, मूर्ति अमूर्ति, बंधन और मोक्ष आदि सब शब्द अर्थ से जो पदार्थ सिद्ध होते हैं, वे सब असत्य रूप है। सब में सर्वदा सब प्रकार आत्मा ही है, और जिसमें सर्वदा सब प्रकार नहीं, वह भी आत्मा ही है, जो सदा ज्यों का त्यों ही है। जैसे स्वप्न में जो कुछ दिखता है वह सब आत्मसत्ता ही है और दूसरा कुछ बना नहीं। हे तात, तृण ही करता है, तृण ही भोगता है और तृण ही सर्वेश्वर है। घट करता है, घट भोगता है और घट ही सर्वेश्वर है। पट करता है, पट भोगता है और पट ही परमेश्वर है। नर करता है, नर भोगता है और नर ही सबका ईश्वर है। इसी प्रकार एक एक वस्तु नाम से जो वस्तु है वह कर्ता, भोक्ता और सर्व ब्रह्म रूप है। ब्रह्मा से लेकर तृण तक जो कुछ जगत दिखता है सो सब आत्म रूप है। क्षय, उदय, भीतर, बाहर, कर्ता, भोक्ता सब विज्ञान मात्र ईश्वर है। कर्ता भोक्ता वही है और न करता है न भोक्ता भी वही है। विधि भी वही है और निषेध भी वही है। शुद्ध दृष्टि से सब चिदात्मा ही भासित होता है। जो सब दुखों से रहित है, जिनको आत्मदृष्टि नहीं प्राप्त हुई, उनको भिन्न भिन्न जगत दिखता है। जो अनुभव से भिन्न नहीं है, ऐसे जानकर अपने स्वरूप में स्थित रहो। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार मैंने तुमसे कहा था, परंतु उससे तुमको अभ्यास की न्यूनता से बोध न हुआ, इसलिए वही संस्कार अब तुमको प्राप्त हुआ है और इसी कारण अब तुम जागे हो। हे राघव, अब तुम अपने स्वरूप में स्थित होकर कृत कृत्य हुए हो, इसलिए अपनी राज लक्ष्मी को भोगो, प्रजा का पालन करो और हृदय से आकाश सम निर्लिप्त रहो। वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, जब वशिष्ठ जी इस प्रकार राम जी से कह चुके, तब आकाश में स्थित सिद्ध और देवता फूलों की वर्षा करने लगे, मानो मेघ बर्फ की वर्षा करते हो अथवा आकाश कंपायमान हुआ हो, उसके तारे गिरते हो। जब वे पुष्पों की वर्षा कर चुके, तब राजा दशरथ उठ खड़े हुए और अर्घ्य पाद्य से पूजन कर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे मुनीश्वर, बड़ा कल्याण और हर्ष हुआ जो तुम्हारे प्रसाद से मैं आत्मपद को पाकर कृत कृत्य हुआ। चित्त का वियोग हुआ है, इससे दृश्य फुरने का भी अभाव हुआ है और मैं अचित चिन्मात्र हूं। अब मैं परमपद को पा गया हूं और मेरे सब संताप मिट गए हैं। संसार रूपी अंध मार्ग से थका हुआ मैं अब विश्राम को प्राप्त हुआ हूं। अब मैं पहाड़ की तरह अचल हूं, सब आपदा से तर गया हूं। जो कुछ जानना था वह जान गया हूं। हे मुनीश्वर, तुमने बहुत युक्ति से दृष्टांत देकर जगाया है, अर्थात शून्य के दृष्टांत, सीपी में रूपा, मृग तृष्णा का जल, रस्सी में सर्प, आकाश में दूसरा चंद्रमा और नदी पर नदी के किनारे का चलते दिखना, जल में तरंग, स्वर्ण में भूषण, वायु का फुरना, गंधर्व नगर, संकल्पपुर आदि दृष्टांत कहे हैं, जिनसे मैंने तुम्हारी कृपा से यह जान लिया कि आत्मसत्ता से भिन्न कुछ भी नहीं है। वाल्मीकि जी बोले, जब इस प्रकार दशरथ कह चुके तब राम जी उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे कि हे मुनीश्वर, तुम्हारी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मैं परमपद को प्राप्त हुआ हूं। मुझको किसी में न राग है न द्वेष है, मैं परम शांति को प्राप्त हुआ हूं। न अब मुझे कुछ करने से अर्थ है और न करने में कुछ अनर्थ है, मैं परम शांत पद को प्राप्त हुआ हूं। हे मुनीश्वर, तुम्हारे वचनों को स्मरण कर मैं आश्चर्य को प्राप्त होकर हर्षित होता हूं। मेरे सब संदेह नष्ट हो गए हैं, अब मुझको और कुछ नहीं दिखता, सब ब्रह्म ही दिखता है। लक्ष्मण बोले, हे भगवान, मैं संतों के वचन इकट्ठे करता रहा था और सब जो मेरे पुण्य थे वे अब इकट्ठे हुए थे, जिन सब का फल अब उदय हुआ है। तुम्हारी कृपा से अब मैं सब संशयों से रहित होकर परमपद को प्राप्त हुआ हूं। तुम्हारे वचन चंद्रमा की किरणों के समान शीतल है, किंतु उससे भी अधिक है। इससे मैंने परम शांति पाई है और मेरे सब दुख संताप नष्ट हो गए हैं। शत्रुघ्न बोले, हे मुनीश्वर, जगत और मृत्यु का जो भय था वह तुमने दूर कर दिया है और अपने अमृत रूपी वचनों का सुधापान कराया है। अब मेरे सब संशय नष्ट हो गए और मैं आत्मपद को प्राप्त हुआ हूं। हमारे जो चीरकाल के पुण्य थे उनका फल आज हमने पाया है। विश्वामित्र जी बोले, हे मुनीश्वर, सब तीर्थों के स्नान और दूसरे कर्मों से भी मनुष्य ऐसा पवित्र नहीं होता जैसे तुम्हारे वचनों से मैं पवित्र हुआ हूं। आज मेरे कान पवित्र हुए। नारद जी बोले, हे मुनीश्वर, ऐसा मोक्ष का उपाय मैंने देवताओं और सिद्धों के स्थानों में भी नहीं सुना, ब्रह्मा के मुख से भी नहीं सुना, जैसा कि तुमने उपदेश किया है। इसके श्रवण करने से फिर संशय नहीं रहता। फिर दशरथ बोले, हे मुनीश्वर, आत्मज्ञान जैसी संपदा कोई नहीं, तुमने यह परम संपदा हमको दी है, जिसके पाने से फिर किसी पदार्थ की इच्छा नहीं रही। अब तो हम अपने स्वभाव में स्थित हुए हैं और संपूर्ण कर्म हमको छोड़ गए हैं। हमारे बहुत जन्मों के पुण्य इकट्ठे हुए थे, उनके फल से ये तुम्हारे पावन वचन सुने हैं। राम जी बोले, हे मुनीश्वर, बड़ा हर्ष हुआ कि यह सर्व संपदा का अधिष्ठान मुझे प्राप्त हुआ। और सब आपदाओं का अंत हुआ। ज्ञान से रहित जो अज्ञानी हैं वे बड़े अभागे हैं। जो आत्मपद को त्याग कर अनात्म पदार्थ की ओर दौड़ते हैं वे भी यत्न करके प्राप्त होते हैं, पर उनसे विमुख होने पर ही आत्मपद प्राप्त होता है। उसी आत्मपद को पाकर मैं शांति युक्त और हर्ष शोक से रहित हुआ हूं। मैंने अचल पद पाया है। मैं अब अजित अविनाशी सदा अपने आप में स्थित हूं। तुम्हारी कृपा से आपको ऐसा जानता हूं। लक्ष्मण जी बोले, हे मुनीश्वर, सहस्त्र सूर्य एकत्र उदय होकर भी हृदय के तम को दूर नहीं कर सकते, पर वह तम तुमने दूर कर दिया है। सहस्त्र चंद्रमा इकट्ठे उदय हो तो भी हृदय की तपन निवृत्त नहीं कर सकते, पर तुमने संपूर्ण तपन निवृत्त की है। हम निसंताप पद को प्राप्त हुए हैं। वाल्मीकि जी बोले, हे साधु, जब इस प्रकार सब कह चुके तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, इस मोक्ष उपाय कथा को सुनकर सब ब्राह्मणों का यथा योग्य पूजन और दान करो। जो इतर जीव है वे भी यथा योग्य यथाशक्ति पूजन करते हैं। तुम तो राजा हो। जब इस प्रकार वशिष्ठ जी ने कहा तब राजा दशरथ ने उठकर सहस्त्र मथुरावासी विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराया। दक्षिणा, वस्त्र, भूषण, घोड़े, गांव आदि दिए, यथा योग्य पूजन किया। निदान बड़ा उत्साह हुआ। अंगना नृत्य करने लगी और नगाड़े, शहनाइया आदि बाजे बजने लगे। चक्रवर्ती राजा दशरथ ने बड़ा उत्सव किया। इस प्रकार 7 दिन तक ब्राह्मणों, अतिथियों और निर्धनों को द्रव्य देकर राजा ने पूजन किया और अन्न और वस्त्र आदि देकर सबको प्रसन्न किया। वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, इस प्रकार वशिष्ठ मुनि के वचन सुनकर सब रघुवंशी कृत कृत्य हुए। जैसे राम जी सुनकर संशय रहित जीवन मुक्त होकर विचरे हैं, वैसे तुम भी विचरो। यह मोक्ष उपाय ऐसा है कि जो अज्ञानी श्रवण करे तो वह भी परम पद को प्राप्त हो। तुम्हारी क्या बात है, तुम तो पहले से ही बुद्धिमान हो। जिस प्रकार मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था वह मैंने तुमको सुना दिया। जैसे रामचंद्र आदि कुमार और दशरथ आदि राजा जीवन मुक्त होकर विचरे हैं, वैसे ही तुम भी विचरो। उनमें मोह भी दिखता था पर वे स्वरूप से चलायमान नहीं हुए। ज्ञान जैसा सुख और कोई नहीं, और अज्ञान जैसा दुख भी कोई नहीं। इसे अधिक क्या कहिए। यह जो मोक्ष उपाय मैंने तुमसे कहा है वह परम पावन है। यह संसार समुद्र से पार करने वाला है। दुख रूपी अंधकार का नाशक सूर्य है और सुख रूपी कमल की खानी का तालाब है। जो पुरुष इसका बारंबार विचार करेगा वह यदि महामूर्ख हो तो भी शांत पद को प्राप्त होगा। जो कोई इस मोक्ष उपाय को पढ़ेगा, कहेगा, सुनेगा, लिखेगा अथवा लिखकर पुस्तक देगा, उसके हृदय में जो कामना होगी वह पूर्ण होगी। वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होगा और राजसु यज्ञ का फल पावेगा, फिर विचार कर ज्ञान पाकर मुक्त होगा। हे अंग, यह मोक्ष उपाय बड़ा शास्त्र है। इसमें बड़ी कथा है और नाना प्रकार की युक्तियां हैं। जिन कथाओं और युक्तियों से वशिष्ठ जी ने राम जी को जगाया था वे मैंने तुमको सुनाई है। अपने उपदेश से उन्होंने उनको जीवन मुक्त किया था और कहा था कि तुम राज लक्ष्मी भोगो। वही मैंने भी तुमसे कहा है कि जीवन मुक्त होकर अपने तप कर्म में सावधान हो रहो और आत्मसत्ता में निश्चय रखना। जिस उपदेश से रघुवंश कृतकृत्य हुए वह मैंने तुमसे ज्यों का त्यों कहा है। इस निश्चय को रखकर कृतकृत्य हो जाओ। इसमें जितने इतिहास और कथा है उनके भिन्न भिन्न नाम तुम सुनो। वैराग्य प्रकरण में राम जी के संपूर्ण प्रश्न हैं। मुमुक्षु प्रकरण में शुक निर्वाण ही कहा है। उत्पत्ति प्रकरण में ये 8 आख्यान कहे हैं। एक आकाशच का, दूसरा लीला का, तीसरा सुचि का, चतुर्थ इंद्र ब्राह्मण के पुत्रों का, पंचम कृत्रिम इंद्र और अहिल्या का, छठा चित्तोपाख्यान, सप्तम वाल्मीकि कथा और अष्टम सांबर का आख्यान। स्थिति प्रकरण में 4 आख्यान है। एक भृगु के पुत्र का, दूसरा दाम व्याल और कट का, तीसरा भीम भास दट और चतुर्थ दासुर का। उपशम प्रकरण में 11 आख्यान कहे हैं। एक जनक की सिद्ध गीता, दूसरा पुण्य पावन, तीसरा बलि को विज्ञान की प्राप्ति का वृत्तांत, चतुर्थ प्रह्लाद विश्रांति, पंचम गाधी का वृत्तांत, छठा उदालक निर्वाण, सप्तम स्वर्ग निश्चय, अष्टम परिघ निश्चय, नवम भास, दशम विलास संवाद और 11 वितव। निर्वाण प्रकरण में 27 आख्यान कहे हैं। भुशुंडी और वशिष्ठ जी का, महेश और शिव जी का, शिलाकोश का, उपदेश, अर्जुन गीता, स्वप्न सत्यरुद्र, वैताल का, भगीरथ का, गंगा अवतरण का, शिखर ध्वज का, बृहस्पति कच प्रबोध, मिथ्या पुरुष का, श्रृंगी गण का, इक्ष्वाकु कुल निर्वाण का, मृग व्याध दृष्टांत, बल बृहस्पति, मंकी निर्वाण, विद्याधर का, हरिणोपाख्यान, आख्यानोपाख्यान, विपश्चित की कथा, शिवी का, शीला का, इंद्र ब्राह्मण के पुत्रों का, कुंद दंत का, महाप्रश्न, उत्तर वाक्य, शिष्य गुरु महोत्सव और ग्रंथ प्रशंसा फल चतुष्ट प्रकरणों में सब 50 आख्यान वर्णन किए गए हैं। इति श्री योग वासिष्ठ महारामायणे वशिष्ठ रामचंद्र संवादे निर्वाण प्रकरण संपूर्णम्। हरि ओम हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।